نحمده على عظيم إحسانه والنجاة برهانه ونظام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد. الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم طهيرا. بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. صلوات الله عليه عزیز. مسلسل سفر اور مجلس کی وجہ سے نہ آواز ساتھ دے رہی ہے اور نہ طبیعت، لہذا بہت ہی مختصر آپ کے سامنے کچھ دیر رہنا ہے. یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے جس میں ارشاد جناب باری ہے پیغمبر سے خصوصی اعلان کے ذریعے Thank you. next year. कि बेशक बस मेरी तरफ ये मुसलसल वही आ रही है कि तुम्हारा परवरदिगार बस एक है, क्या तुम सलाह करो क्या तुम तस्लीम होते हो फहल अंतुम मुस्लिमून, क्या तुम तस्लीम होते हो इस सिलसिले में परवरदिगार जो ईसाई करीमा में बयान हो रही है उसी के तसव्वुर पर इंशाअल्लाह ये चंद रोजा मजलिस मैं आपके सामने गुफ्तगु रहेगी। आज आयात के बाहरी रुख और अल्फाज पर दो एक बातें अर्ज होंगी। कुरान मजीद में जब आप देखेंगे तो मुख्तलिफ अंदाज हैं जो नजर आते हैं, क्योंकि कुरान मजीद किताबी सूरत में आसमान से नाजिल नहीं हुआ बल्कि 23 साल गुफ्तगु है परवरदिगार की अपने बंदे से और एक राबते मुसलसल है वही के जरिए जो खुदा अपने बंदे से बरकरार किए हुए है। लिहाजा जिस तरीके से गुफ्तगु में मुख्तलिफ अंदाज होते हैं उसी तरीके से कुरान मजीद में भी मुख्तलिफ अंदाज हैं। किसी जगह पर कुरान मजीद आम गुफ्तगु कर रहा है, किसी को मुखातर बनाए बगैर और बयान हो रहा है कि ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, ये वो किताब है जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई रैब नहीं है। कहीं कुरान मजीद चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है, बात में वज़्न पैदा कर रहा है, खुद अपने लिए कह रहा है कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, अगर तुम्हें शक है उस चीज के बारे में जिसको मैंने अपने बंदे पर नाजिल किया है चैलेंज कर रहा है कुरान मजीद। अब इस लफ्ज पर गुफ्तगु नहीं है वरना आज करता आपके सामने कुरान मजीद ने तकरीबन 4 चैलेंज हैं जो किए हैं इसी हवाले से। पूरे कुरान का जवाब ले आओ, 10 सूरों का जवाब ले आओ, 1 सूरे का जवाब ले आओ, किसी एक बात का जवाब ले आओ। अल्लाह, अब इससे ज्यादा परवरदिगार आलम कैसे गुफ्तगु करे। और अब बात यहां पर आ गई है तो मैं एक लफ्ज कहकर के आगे बढ़ू। पैगंबर ने अरब के उस माहौल में कि जहां पर फसाहत और बलागत का दौर दौरा था, और अगर आप अंबिया की सीरत का मुलाहिजा करेंगे तो आपको यह बात नजर आएगी कि जिस दौर में जिस चीज का ज्यादा दौर दौरा होता है अंबिया को मोजिजा उसी किस्म का दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि एक चीज जो बिल्कुल जमाने में है ही नहीं और नबी कुछ उस तरीके से करके दिखाए कि लोग इसको जानते ही ना हो, नहीं, बल्कि जो चीज ज्यादा सामने है उसी को परवरदिगार आलम मोजिजा बना करके पेश करता है। अगर जादू और सहर का जमाना चल रहा हो और जादूगर अपने करतब के जरिए से बहुत से काम अंजाम दे रहे हो और दुनिया यह समझ रही हो कि यही बहुत कुछ है और इसके सामने कोई टिक नहीं सकता और इसका कोई जवाब नहीं ला सकता, तो परवरदिगार अपने नबी की हकानियत का उसी को और उस जादू और सहर को बातिल करने के लिए जनाबे मूसा जैसे नबी को भी असाए मूसा जो अजदहा पर रहा है ये मोजजा दिया जाता है कि जनाबे मूसा मुझे वाकया नहीं नकल करना आपके सामने कि जैसे जैसे उन जादूगरों की रस्सियां सांप बनती चली गई जनाबे मूसा का अजदहा उन्हें निगलता चला गया। और जब इस मंजर को देखा तो वो जो अपने कर्तव्य लेकर के आए थे अपने जादू लेकर के आए थे फौल के सज्जदा सारे के सारे साहिर सजदे में गिर गए। क्यों? ये नबी का मोजज़ा था। तो जिस जमाने में जिस दौर में जो चीज होती है उसी को परवरदिगार आलम था कि जहां इल्म का जमाना था करके पता है पैगंबर का वो दौर कहा जाता है जो उसी जमाने के कहे हुए अरबी अशआर आज अदब का मेयार बनते हैं। इस जमाने में ऐसे लोग थे वो कि जहां अपने आप को अरब यानी बोलता हुआ कहते थे दूसरे को अजम यानी गूंगा समझते थे, ऐसे जमाने में पैगंबर ने कुरान मजीद को ला करके पेश किया। अब मुझे इस पर बहस नहीं करना आपके सामने क्योंकि गुफ्तगू करबला से महसूस होगी तौहीद और करबला के उन्वान से, लेकिन मैं थोड़ा सा इस रस पर गुफ्तगू करके आगे बढ़ना चाहता हूं। पैगंबर ने काबे की दीवार पर बड़े बड़े लंबे चौड़े कसीदे टंगे हुए थे, सुना है आपने इसको हजारों बार अपने मस्जिद को मरबूत करीब कसीदा ना कह लेता कर रहा हूं पड़े हुए थे जिसको जब कोई बैठा होता
लंबे लंबे कसीदे बड़े बड़े कसीदे काबे की ایمان سے اترنا شروع ہوئے, چونکہ علم رکھتے تھے شاعری کا, چونکہ علم رکھتے تھے فصاحت و بلاغت کا, لہذا محسوس کر لیا کہ اس کے سامنے ہمارے قصیدوں کی اوقات نہیں ہے, ہمارے قصیدوں کی حیثیت نہیں ہے. تو خیریت اسی میں ہے کہ اپنے قصیدے ہٹا دیے جائیں, اس کے سامنے نہ لایا جائے. یعنی کم از کم اتنی خیریت باقی تھی, اتنی غیرت باقی تھی کہ جب مجھ سے بہتر کچھ آ جائے, جب مجھ سے بہتر کوئی چیز آ جائے تو ہمیں پھر جگہ گھیرنے کا حال نہیں آئے.
جب تک انسان کسی لفظ کو سمجھے گا نہیں,
पहली बात तो जब तक वो शेर समझ में ना आए तो तसल्ली नहीं कर सकता। शेर जब समझेगा जब लफ्ज समझ में आए, है कि नहीं? जब अल्फाज समझेगा तभी तो शेर को समझेगा। जिसे अल्फाज ही नहीं आते किसी जबान के, वो शेर क्या समझेगा? वो जब अल्फाज समझेगा तो शेर समझेगा। अल्फाज का समझेगा जब उसकी अपनी तरफ से हो, वो जानता हो। अच्छा, अगर भगवान ने कुछ ऐसे अल्फाज नाजिल कर देता जो अरब में बोले नहीं जा रहे थे, और फिर कहता थे लाओ जवाब, तो क्या होता? कोई तो बात नहीं होगी, न वो समझते न कुछ कहते। और वो लिखा गया ना उनको चूं के समझाना था, लिहाजा उन्हीं की जबान इस्तेमाल की। वही अलिफ से लेकर के ये तक जो हुरूफ बोले जा रहे थे, वही अलिफ से लेकर के ये तक जो हुरूफ अरबी में बोले जा रहे थे, वही अलिफ, वही बे, वही ते, आखिर सारे अल्फाज वही, सारी तरकीबें वही, सारे हुरूफ वही, सारे अल्फाज वही, सारी तरकीबें वही, सारे मुहावरे वही। मैं आपके सामने कोई ऐसा मुहावरा इस्तेमाल करूं जो फारसी का हो या अरबी का हो, आप उसे नहीं समझ सकते। जब तक वो मुहावरा उर्दू में बोला जा रहा हो उसे तरीके से, या उर्दू का मुहावरा फारसी में ले जाए तो वहां बात समझ में आएगी। हर जबान के अपने मुहावरे होते हैं, वाजे है नहीं? वही मुहावरे, वही अल्फाज, वही हुरूफ, वही अंदाज़े गुफ्तगु, वही तराकीब, सारी चीजें वही। तो ये जवाब देना चाहता हूँ, सारी चीजें वही। लेकिन जब उन्होंने देखा तो ये कहा कि महाजा कलाम उल बशर, ये कैसे हुआ कि महाजा कलाम उल बशर? ये किसी बशर का कलाम नहीं है, क्या इसकी लफ्ज़े बशरी नहीं? मैं बात करना चाह रहा हूँ, अब ये बता दे, क्या इसके हुरूफ बशर के हुरूफ नहीं है? क्या ये तो अलीफ बे के से इन्ना अलीफ नून अलीफ आता ही ना अलीफ आया तो ये नून ये जो इस्तेमाल हो रहा है, क्या ये अरबी में तुम्हारे यहाँ नहीं बोला जा रहा? ये बशर की हर्फ नहीं है, क्या ये बशर ही की है? क्या लफ्ज़े इन्ना तुमने कभी सुना नहीं तो हमने सुना है? क्या लफ्ज़े आता ही ना ये आया तुम्हारे यहाँ नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है? क्या लफ्ज़े कौसर तुम्हारा नहीं है, क्या नहीं वो भी हमारा है? तुम्हारी हर्फें बोली जाने वाली, तुम्हारे अल्फाज बोले जाने वाले, तुम्हारी तरकीबें इस्तेमाल होने वाली, फिर ये कैसे बशर का कलाम नहीं है? फिर ये कैसे बशर का कलाम नहीं है? लफ्ज़ तुम्हारी, अल्फाज तुम्हारे, हुरूफ तुम्हारे, तस्दीदात तुम्हारी, सारी वो ग्रामर जो अरबी में तुम इस्तेमाल करते हो वही यहाँ इस्तेमाल हुई, तो क्यों बशर का कलाम नहीं है? इसका अंदाज, इसकी सरासत, इसकी गहराई, इसकी गिराई, इसका बयान, इसका तरीका, ये बशर का नहीं रह गया। इतना वजनी बशर बोल ही नहीं सकता, इतना गहरा बशर गुफ्तगू कर ही नहीं सकता। इस अंदाज में इंसान के बस की बात नहीं है गुफ्तगू करना, तो कम से कम एक बात तो समझ में आई। हुरूफ भी मैं कह रहा हूँ, हुरूफ तुम्हारे, अल्फाज तुम्हारे, सारी तरकीबें तुम्हारी, खुदा ने क्या किया? अपनी लफ्ज़े नहीं नाज़िल की, अपने हुरूफ नहीं नाज़िल किए, अपनी तरकीबें नहीं नाज़िल की, तुम्हीं से हुरूफ को लिया। कम से कम इसी नुस्खे को अरब के हम समझ लेते, तुम्हीं से हुरूफ लिए, तुम्हीं से अल्फाज लिए, तुम्हीं से तरकीबें लिए, सारी चीजें तुम्हारी लेकर के अगर वो मुरत्तब कर दे, तुम्हारे अल्फाज सारी चीजें तुम्हीं से लेकर के अगर उसने कलाम मुरत्तब कर दिया, याद रहो तस्दीक कहूं तो कलिमात तुम्हीं से लिए, कलाम उसने बना दिया। कलिमात तुम्हारे हिदायत से नहीं आए, कलाम उसने बना दिया, मुरत्तब उसने कर दिया। तो अब ये तुम जैसी न रह गई, अब ये तुम जैसी न रह गई। अब ये न कहना कि ये वही अलीफ है जो हम बोलते हैं, अब ये न कहना कि ये वही बे है जो हम बोलते हैं, ये वही ना है जिसे हम बोलते थे, ये वही आकाइना है जिसे हम इस्तेमाल करते थे। नहीं, वो कह रहे महाजा कलाम उल बशर, ये बशर का कलाम रह गया, अल्फाज सारे हमारे थे, लेकिन चूंकि उसने तरतीब दे दिया, अब इसमें वो जान आ गई जो बशर का ही नहीं। आगे मजीद ने बार बार इस लफ्ज को इस्तेमाल किया है, आप में इंसान कभी अगर वक्त होगा इस गुफ्तगू में नहीं थे, कभी और एक मुस्तकिल गुफ्तगू इस पर होगी। हम छोड़े कैसे, हमने अपने बाप दादा को नहीं करते हुए पाया है। अब मैं यहाँ पर रुक करके ब्रेकेट में जुमला कह रहा हूँ, हम छोड़े कैसे, हमने बाप दादा को करते हुए जो पाया है। इस्लाम बाप दादा के करने का नाम नहीं है, इस्लाम पैगंबर की इबादत का नाम है। अगर किसी गलत बात को बाप दादा करते चले आ रहे उसके माने ये नहीं है क्या सही हो रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है इंसान इतना झूठ बोलता है किसी चीज के बारे में कि खुद अपने आप को भी शक होता है कभी सही ना हो। वही किसी के नाते जब खुला जगह पर हलवा बन रहा है लोगों ने लाही लगा दी कुत्ते में खुद भी खराब हो गए थे सही है।
लेकिन हमने देखा कि अरबों ने इस आस हमारी किताबें तारीख के हर सफे पर सिर्फ इन्हीं चेहरे नजर आएगा, सिर्फ इन्हीं चेहरे नजर पादवाम करके सिलारा मसाले करो कर्म करो। हमारी किताबें तारीख के हर सफे पर सिर्फ इन्हीं चेहरे नजर आएगा, मुकाबले में हुआ हमारे खून से गारे बनाए गए, हमें दीवारों में चुना गया, हमें कत्ल किया गया, हमारी औरतें बेवा हुई, हमारे बच्चे यतीम हुए, हम पर जाने कितने इल्जाम लगाए गए, कहीं कुफर का इल्जाम, कहीं कोई इल्जाम, कहीं कोई चीज सर हमारी तारीख में हुआ होता है। आप देख रहे बयान का मौका नहीं है, कितने मौसम में नहीं है, ऐसा हमने मुकाबले में सिर्फ इल्मी चैलेंज किया। आज तक भी वो मम्लकत जिसकी बुनियाद गरीब पर है उसका दुनिया में तो चैलेंज है सिर्फ इल्मी है। किसी मुल्क से तकबराना गुफ्तगु तक नहीं, लेकिन पूरी दुनिया अपने लिए खतरा महसूस कर रही है। क्यों? इसलिए कि वो इल्मी चैलेंज कर रहा है और दूसरों के पास इल्म के जवाब में इल्म नहीं है, लिहाजा कभी यहां से घेरा जाता है, कभी वहां से घेरा जाता है, कभी ये पाबंदी लगती है, कभी वो पाबंदी लगती है, लेकिन उनके
वहां कभी भी आलिम को मिटाया नहीं जा सकता,
क्यों मैं ही कह रहा हूं, मासूम कह रहा हूं। आलिम कब तक बाकी रहेगा कि जब तक सवाला बाकी रहेगा और बातों मां बात है, जब तक जमाना बाकी रहे उलमा बाकी रहे। उलमा से मुराद मुझे से लिबास पहनने वाले लोग नहीं है, मसलन लोग ना चाहिए वाकई जो आलिम वक्त में इंसान आलिम की सिफत पर गुफ्तगु करे, लेकिन वो आलिमान आलिम हमर जो करबला की सरजमीन पर आए थे उनका जवाब तारीख पेश कर सकते। मैंने इससे पहले भी शायद ये लफ्ज आपके सामने कही हो कि जिस शहीद के जनाजे पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो लफ्जे कही हैं उन लफ्जों से उस शहीद की अजमत का अंदाजा लगता है कि वो कैसा इंसान था, क्योंकि इमाम के लफ्जे हैं मुबालगा आराई नहीं है, वही कह रहे हैं जिसका वो मुस्ताफ था। जब जनाब हबीब इब्न मुताहिर के जनाजे पर इमाम हुसैन आए हैं तो आवाज देते हैं बिल्लाहि दर्रुका या हबीब लकद कुंता फाज़िला, हबीब खुदा तुम पर रहमत नाज़िल करे, तुम एक मर्द फाजिल थे जिसके फाजिल होने का हुसैन एतराफ कर रहे हैं। वो इंसान कैसा होगा, लकद तख्तम القرآن في ليلة واحدة تختم القرآن في ليلة واحدة يا حبيب تم وہ ہو جو ایک رات میں پورے قرآن کی تلاوت کرتے، ایسے ایسے گوہر نایاب سرزمین کربلا پر موجود ہیں، ایسے ایسے علماء امام حسین تو اصل علم ہے، میں پہنچوں گا تو عرض کروں گا آپ کے سامنے، لیکن جن کو ساتھ لے کر کے آئے ہیں وہ ایسے ایسے علماء جناب عباس سلام اللہ علیہ کے لیے جو لفظ نکلی ہیں قاتلوں نے جو گواہی دی ہے کہ میں مجھے خدا کبھی نہیں معاف کرے گا، کہا کیوں، کہا میں نے ایسے انسان پر وار کیا ہے جس کی پیشانی پر سجدے کا نشان تھا، جس کا چہرہ خوف خدا سے زرد تھا، جس کی آنکھیں خوف خدا سے روتے روتے سرخ تھی، اس کا بلیا بیان ہو رہا ہے جناب عباس سلام اللہ، ایسے ایسے گوہرے نایاب حسین ابن علی کربلا کی سرزمین پر لے کر گیا، کیوں، چونکہ کربلا کی جنگ کو حسین کو صرف قوت بازو سے نہیں جیتنا، کربلا کی جنگ کو علم سے جیتنا، اس کے بیان کا موقع نہیں ہے، میں نے بیان سنوں تو کبھی اگر ہوا تو آپ کے سامنے، تو حسین ابن علی نے کربلا کی جنگ کو علم سے جیتا، یزید نے سوال کیا امام حسین نے جواب میں انکار کیا، اپنے انکار پر باقی رہے، کیسے باقی رہے، علمی دلیلوں سے باقی رہے، ہر ہر بھی نہیں ہے نا حضور اللہ، بات آ ہی گئی کہ ایک لمحہ بولایا مدینے میں تقریباً 26 رجب رات کا وقت ہے، قاصد آیا امام مسجد میں بیٹھے ہوئے اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ، کہا کہ چلیے آپ کو مالک نے بلایا، کہا اس وقت رات میں کہاں، کہا تم چلو ہمارا آپس میں گفتگو ہوئی کیا ہوا، اس وقت کیوں بلا رہا آپ کو مالک، سب نے اپنی اپنی رائے، امام نے کہا میری نظر میں یہ ہے کہ حاکم شام دنیا سے چلا گیا، اس کا بیٹا یزید بیٹھا ہوگا تخت پر، بیعت کے لیے بلایا جا رہا، ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی قاصد پھر آیا کہ مجید آپ کے انتظار میں بیٹھا، ہم کہہ چکے ہیں چلو ہم آ رہے ہیں، گھر آئے ساتھیوں کو لیا اسلحے لیے امام نے سب کو لے کر کے چلے، جا کر کے ولید کے دربار کے باہر روک دیا، کہا تم یہیں رکو، اس نے مجھے اکیلے بلایا، میں اکیلا چلا، اگر میری آواز بلند ہو تو اندر آ جاؤں، اور میرا میرا دفاع ہوا، یہ لفظے ہیں جو مقاتل لکھتے ہیں، امام اندر گئے چکے اکیلے بلایا، امام اندر گئے اللہ نے اقدار کا خیال، گفتگو ہوئی،
مجھے آپ کے ذہن میں ہے، آگے نہیں کرنا. امام نے کہا کہ غریب شاید تمہیں بھی یہ بات اچھی نہ لگے اور مناسب بھی نہ ہو کہ ہم رات کی تاریخی میں اپنے موقف کا اعلان کریں اور بیعت کریں. اسی جگہ سے بات شروع ہو گئی، بلکہ بہتر یہ ہے کل دن کی روشنی میں تو لوگوں کو بلا، ہم بھی لوگوں کو لے کر کے آتے ہیں اور پھر ہم اپنے موقف کا اعلان کریں. خلافہ پھر دیکھتے ہیں کہ خلافت کا مستحق کون ہے. ولید نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں گے، کل آئیے. امام حسین اٹھ کے چلے گئے، مرباد وہاں بیٹھا تھا میرا اون. اس نے کہا ولید اگر حسین آج چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئے، تم دیکھ رہا تھا اکیلے آئے، یا بیعت لے لے یا سر قلم کر لے. بس یہ سننا تھا امام حسین اپنی مقام سے اٹھ کے اور آواز دی، یا اپنا زرکا انت تقتلن یا ہو، اے نبی چش والی عورت کے بیٹے تو مجھے قتل کرے گا یا تو. پر جیسے ہی آواز بلند ہوئی بنی ہاشم ڈرانا دربار میں داخل ہو گئے. سب سے آگے آگے کون ہو سکتا ہے؟ سرکار وفا ابوالفضل عباس. جناب عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر امام حسین نے نظر و سلوک کیا. عباس کسی ایسے جنگجو انسان کا نام نہیں ہے کہ جب جوش میں آ جائے تو سامنے دکھائی کر دے کچھ. جی نہیں، عباس ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بہادر ہیں اس سے زیادہ موتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ ایمان کے موتی ہیں. تبھی عباس ہے نظر و سلوک دیا اور اس کے بعد ایمان نے گفتگو کی ہے بلی سید ہو امیر سن
چونکہ جواب نہیں ہو سکا حسین ابن علی کا شمشیر لے لائے گئے.
नतीजे में पूरा घराना खत्म हो गया,
नाकाम नहीं हुए, कामयाब,
क्योंकि एक मैंने कर दिया कामयाब हुए।
हाँ
कत्ल हो गए, कत्ल होना मसला नहीं, मौत तो आनी ही है यार, तुम मारो या करना कुछ मर जाएंगे, मौत तो आनी ही है, असल कामयाबी तब होगी जब इल्म से वाबस्ता की हो जाए, और अगर जहल से वाबस्ता की है तो नाकामी, अगर इल्म से वाबस्ता की होगी तो कामयाबी होगी। हुसैन इब्न अली का पूरा घराना कत्ल कर दिया। बस मजलिस तमाम, 11 मुहर्रम को उमर साद ने सुबह से जोहर तक अपने पुश्तहाए नजिस को दफन किया, जो उसके लोग मारे गए थे उसने चुन चुन के सब पर नमाज पढ़ी और दफन किया, और अब कर्बला की जमीन पर कौन से लाशें पड़ गई, खुद हुसैन इब्न अली, औलाद हुसैन, अंसार हसन, सिर्फ ये लाशें कर्बला की सरजमीन पर बेगौर दफन पड़े, अपने कुछ कहा जिसको दफन कर दिया। उसके बाद बाद ज़ुहर ये काफिला कर्बला से कूफे जाने के लिए आमादा हुआ, क्या दिया गया, कुछ ऊंट लाए गए, बस इससे आगे बात न बढ़ी, कुछ ऊंट लाए गए नंगी पुश्त। मैंने इस चीज को उस्ताद से सुना कि आगे आगे जो ऊंट चल रहा था वो बार बार पीछे मुड़ता था, ऐसा लगता था जैसे कुछ कह रहा है, कहीं क्या कह रहा है। फिर मैं अभी आगे आगे ये कह रहा है अपने साथियों से कि हमारी पीठ पर आले मोहम्मद के बच्चे बैठे, आहिस्ता चलना, कोई बच्चा गिर न जाए, वरना हम क्या जवाब देंगे पैगंबर को, लाए गए हो। आप जानते हैं ऊंट पर सवार होना आसान नहीं है, ऊंट को बिठा दिया जाता है उसके बाद भी उसकी पुष्ट बुलंद रहती है। अरब में दस्तूर यह था कि बीवियों को ऊंट पर सवार करते थे, इंसान घुटना तोड़ के जमीन पर बैठता था, तो बीवियां उसके घुटने पर पैर रख करके ऊंट पर बैठ जाती थी, और दस पकड़ करके हमारी पकड़ करके सहारा लेके इसके पैर का ये सीधा करता था, बीवियां बैठ जाती इस तरीके से बीवियों को सवार कराए करते, जैसे कि मदीने में चलते वक्त हुआ था। रवि कुछ अमालियां खड़ी थी, कुछ जवान मौजूद थे, कुर्सी पर हुसैन इब्न अली बैठे थे, चारों तरफ जवान बनी हाशिम खड़े थे, इमाम हुसैन ने ऐलान किया बनी हाशिम अपने अपने महरमों को सवार करो। अब उसे सुनना था एक जवान रहता था, कोई बेटी बाहर आती थी वो जाता था घुटना तोड़ता था बैस पैर रख करके तो उनको बैठ जाती थी, हमारे बैठ जाती थी, तो मैंने देखा एक बुलंद कर दीदी सर से पांव तक चादर में मलबूस घर से बाहर आई, सारे बनी हाशिम आगे बढ़े और किसी ने आवाज दी मदीने वालों हटा नजर पीछे हटो। मैंने पूछा ये क्या हुआ कौन है, कहा हो न हो अली की बेटी से बात हो रही है,
Yeah. Ha ha ha.